ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பகவான் கி அசீம் அஹேது கி கிருபா கே சாத் ஹம் லோக் விசார் கர் ரஹே தே ஈஷா வாஷ். ஈஷ் इष्ट, इसका ईशा का अर्थ शासन करता, तृतीय विभक्ति में ईशन से ईशा बन जाता है, माने जो सृष्टि का, सकल सृष्टि का शासन करता है. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचत् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा माग्रद कश्वसधनम्. ईशा वाश्यमिदं सर्वम्. ओम ईशा वाश्यमिदं सर्वम्. ओम प्रणव है. प्रणव के तीन अ उ म, अकार मकार उकार, अर्थात सृष्टि उत्पत्ति स्थिति ब्रह्मा विष्णु महेश, निर्गुण से जो परात्पर निर्गुण निष्कल ब्रह्म है, जिसे निर्गुण निराकार कहा गया है, वही निर्गुण निराकार जगत के कार्य के लिए सगुण साकार. बोले सगुण साकार क्या है? ये जो तीन अ उ म, अर्थात सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि का लय करने, उत्पत्ति स्थित लय कारक जो शक्ति है, और ये ओम अक्षर में प्रणव अक्षर ओमेत्यक्षरम ब्रह्मा, यही साक्षात परात्पर प्रब्रह्म परमात्मा है. बोले प्रब्रह्म परमात्मा ओम तीन शक्ति, और इसके ऊपर अर्ध मात्रा लगती है, ऊ के ऊपर अर्ध चंद्र और बिंदी, उसे कहते हैं अर्ध मात्रा. और वह अर्ध मात्रा से युक्त जो ओमाक्षर है बनता है ओम. बोले ये ओम क्या है? बोले ओम ब्रह्म है, परंतु ब्रह्म की परिपूर्णता सृष्टि के कार्य के लिए जब तक ओम में अर्ध मात्रा नहीं लगती तब तक वो पूर्ण नहीं बनता. अर्थात ब्रह्म स्वयं सत्ता के बिना सृष्टि की रचना करना चाहे नहीं कर सकता, और केवल सत्ता ज्ञान से रहित होकर सृष्टि का कार्य करना चाहे तो भी नहीं कर सकते. अर्थात खेल खेलने के लिए दो, जब तक दो नहीं होंगे तब तक कोई खेल नहीं हो सकता. जगत की उत्पत्ति के स्वयं कारण भी हैं और स्वयं कार्य रूप में विभाजित भी होते हैं. निर्गुण से निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निरतिशय व्यापक ब्रह्म, वह निष्कल ब्रह्म से सकल अर्थात सर्गुण साकार, और सर्गुण साकार में किसका आश्रय लिया? बोले स्वयं से उस महाशक्ति का, सत्ता का आश्रय लेकर, अर्थात ओम के द्वारा ये सृष्टि में परमात्म ब्रह्म का संबोधन करने वाला ओमाक्षर सबसे पहले पहले ब्रह्मा जी के मुंह से एक शब्द निकला था ओम, और दूसरा शब्द निकला था अथ. ओम अथ, अथ धर्म जिज्ञासा, अथ ब्रह्म जिज्ञासा. इसी प्रकार ओम जो शब्द है वो मंगलानाम मंगलम, ये मंगल को मंगल प्रदान करने वाला, कल्याण को कल्याण प्रदान करने वाला, शुभ में शुभ भर देने वाला, ये पवित्र नाम भगवान का ओम नाम है. सब नामों में से, सारे नामों में परमात्मा का सबसे प्रिय और सबसे पहला जो नाम है वो केवल ओम है, और इसी ओम को प्रणव भी कहते हैं. अर्थात प्रणव इसलिए कि जो प्राणों के द्वारा श्वासों के द्वारा जिसका जप किया जा सकता है, श्वास श्वास ओ म ओ कहते हुए श्वास को भीतर लो, म कहते हुए सांस को रोको और उ कहते हुए सांस ओ उ म, अर्थात अकार अ अकार मकार उकार, अर्थात इस प्रकार इन तीनों शब्दों के साथ बड़े अ उ म इन अलग अलग शब्दों के साथ आप प्राणों को खींच भी सकते हैं। रेचक पूरक और कुंभक तीनों प्रकार का प्राणायाम इस अक्षर के द्वारा होता है, इसलिए इसको प्राणायाम के लिए भी और अजपा जाप के लिए, जो लोग जजपा जाप करते हैं केवल परमात्मा का स्मरण करते हैं उसे ओम अक्षर का जप करना चाहिए। ओम ईशा वाष्य विदम सर्वम, अर्थात जो सृष्टि का ईशन करने वाला शासन करने वाला है उसका ईशा, और वह सबका ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा वही सब जीवों की आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है, अर्थात उसके अपने स्वरूप भूत आत्मा से सब वाष्य है माने आच्छादित है। ईशा वाष्य, वाष्य माने आच्छादित कर देना, ढक देना। ये कह सकते हैं कि ये सकल जगत, जगत्याम जगत, ये संपूर्ण सचराचर जड़ चेतन जो जगत है बोले किससे, ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से ढका हुआ है, ईश्वर के स्वरूप से ढका हुआ है, ये कह सकते। और ईश्वर का जो स्वरूप है वो क्या है बोले आत्मा, आत्मा से आच्छादित है, ये कह देना। सरल शब्दों में ये कहेंगे ये संपूर्ण यह जो हमें दिखाई पड़ रहा है जगत, जगत्याम जगत, ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से ढका हुआ, अर्थात इसका जो स्वरूप है जगत का जो स्वरूप है, रूप नहीं, रूप तो नाम भी है और रूप भी है, जगत का जो नाम रूप को पार करके यदि आप स्वरूप देखें तो ये केवल आत्मा से ही आच्छादित है, आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, स्वयं की आत्मा, स्व अपनी आत्मा से, कि आत्मा से अभिप्राय जो भी जगत सामने जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा हमें, ये मेरी आत्मा से कुछ अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। बोले आत्म स्वरूप से जगत का दर्शन करें तो अपनी आत्मा में ही ये संपूर्ण जगत दिखाई देता है, अर्थात मैं ही इस जगत के रूप में, ये जो व्यापक जगत है सब कुछ इसमें आत्मा की व्याप्ता सार्वभौम जगत में है, व्याप्त है, आत्मा से कुछ अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। अपनी आत्मा को जगत के रूप में देखना मतलब वाष्य करना, आच्छादित कर देना इतना व्यापक रूप से, ईशा वाष्य विदम सर्व। और जो ये मंत्र कहता है, ईशा वाष्य उपनिषद कहती है, वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्राम्य भाषा में बड़ी सरलता से कह दिया। क्या कहा, सिया राम मय सब जग जानी, करहू प्रणाम जोरी जुग पानी। जहाँ आत्मा के रूप में सकल जगत का दर्शन ज्ञानी की करती है, तत्ववेता की करती है, तत्ववेता की दृष्टि सकल जगत को अपने आत्म स्वरूप में देखता है, और वही भक्त इस सकल जगत को, संसार को अपने भगवान के रूप में देखता है। देखो नारायण, मैं हमेशा ये कहती हूँ, या तो ये मानो कि ये सब कुछ जो कुछ भी हमें दिख रहा है ना, ये सब कुछ मैं सहित सब कुछ, सब कुछ मैं अपने को नहीं छोड़ना, जैसे हम किसी को कहते हैं सबका भला करना भगवान, उस समय हमें ऐसा लगता है कि यदि मैं ये कहूंगा सबका भला करना भगवान तो मैं चला जाऊंगा, तो जब सबका भले का हम नाम लेते हैं तो सबके भले में हम भी आ जाते हैं, हमारी गिनती भी होती है, पर हम ये बात भूल जाते हैं। उसी तरह से ये संपूर्ण जगत, या तो ये मानो कि सब भगवान का है, ठीक, यहां तक भी बात ठीक है, और या ये मानो ये सब प्रकृति है, ये सब की सब क्या है, प्रकृति है, और सत्ता को स्वीकार करो तब आपको लगेगा कि हाँ आपके ऊपर कोई सत्ता है, और या ये स्वीकार करो आप सत्ता स्वीकार करते हैं, ये सब प्रकृति है, सत्ता है, तो आप कर्माधिकारी हैं, और यदि ये स्वीकार करते हैं कि ये सब भगवान का है तब आप भक्त हैं, और यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि ये सब उस ईश्वर आत्मा है, आत्म रूप में, मेरे स्वरूप में, आत्मा के रूप में व्याप्त है, अपनी आत्मा को ही सर्व रूप में, सर्व स्वरूप में आप देख रहे हैं, तो आपकी दृष्टि तात्विक दृष्टि है, तत्ववेता है, ज्ञानी है, आपकी निष्ठा ज्ञान में है, आपकी निष्ठा कर्म में है, और आपकी निष्ठा भक्ति में है, मानने में है। बताओ कहाँ है आपकी निष्ठा? किसी एक को आधार बना के तो आप चलोगे ना? न हम कर्म को ही लेके चलते हैं, न हम भक्ति को ही लेके चलते हैं, न हम ज्ञान को ही लेके चलते हैं, आखिर हम मानते क्या हैं? सोचो अपनी आपके लिए, हमारी मान्यता की, हमारी निष्ठा की कोई एक पर इसका कोई एक लक्ष्य तो होना चाहिए। किस लक्ष्य पर कि अपनी निष्ठा को आपने स्थिर किया हुआ? भगवान कहते हैं गीता में वही बात जो गोस्वामी जी अपनी सामान्य भाषा भक्ति भाव से कह रहे हैं, वही बात गीता में भगवान कहते हैं क्या? मया तदमिदं सर्व अव्यक्त मूर्तिना, ये संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति के रूप में है। मयस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषापि स्थितम्। भगवान कहते हैं ये संपूर्ण जगत ये मेरी अव्यक्त मूर्ति है, अव्यक्त मूर्ति के रूप, व्यक्त जगत है, और इस व्यक्त जगत में जो व्यक्त जगत को प्रकट करने वाला है वो अव्यक्त स्वरूप आत्मा है, आत्म रूप में इस जगत का दर्शन करता है। जिसमें यह जगत प्रकट हो रहा है उसका आधार बोले कौन है? आत्मा है, अपनी आत्मा में ही। और आत्मा से कैसे दर्शन करता है? जैसे चंदन की बट्टी होती है ना, चंदन घिसते हैं, चंदन के साथ जब पानी को लेकर के घिसा जाता है तो धीरे धीरे चंदन घिसते हुए अपनी सुगंधिता, जल का जो गंध है, जो उसमें अगर मिला दिया जाता है, कपूर मिला दिया जाता है, और उस कपूर को लेकर के, जल को लेकर जब हम चंदन की बट्टी घिसते हैं तो धीरे धीरे कपूर की जो दुर्गंध है वो और जल में ऐसी मिल जाती है कि चंदन से सुवासित हो जाती है, चंदन की खुशबू आने लगती है, और वो जल और कपूर जैसे चंदन में मिल गया और चंदन से उसकी खुशबू व्याप्त हो गई। उसी प्रकार जगत को देखकर उसमें आपकी खुशबू, आपकी आत्मा की व्यक्तता प्रकट हो, माने चंदन में जैसे पानी मिल गया, अगर मिल गया और उसमें उसके साथ चंदन की खुशबू व्यक्त हो जाती है। कोई भी चीज, मैं तो हमेशा कहती हूँ, किसी ने कोई कड़वी चीज आपके आगे रख दी है तो इतनी चिंता वाली क्या बात है, मिठास आपके पास है, उसे मीठा डाल करके उसे मीठी कर लो, कड़वी की क्या बात है, उसे मीठा कर सकते हो। माने जो आपके सामने आया है जगत, हम जो कुछ भी जगत सामने आ रहा है उसमें आत्म भाव से आप दर्शन कर रहे हैं, आत्म स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप में, तो वह जगत इस संसार में रहते हुए ओ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत, ये संपूर्ण जगत। और भाष्यकार कहते हैं तेन तक्तेन भुंजिथा, संसार में रहते हुए त्याग पूर्वक पालन करो। तेन तक्तेन भुंजिथा माने त्याग पूर्वक पालन करो। त्याग पूर्वक पालन करो कहने का अभिप्राय, त्यागना क्या है? त्यागना है ऐष्णाएं, ईष्णाएं इच्छाएं होती हैं। तीन प्रकार की ऐष्णाएं बड़ी बलवर्ती होती हैं, नारायण पुत्तेष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा। पहली बात पुत्रेष्णा, पुत्रादि की इच्छा, पुत्र को प्राप्त करने की, संसार में पुत्र के लिए बड़ी इच्छा होती है कि हमारे बेटे के लिए ये हो जाए, वो हो जाए, हमारे बच्चों के लिए ये हो जाए, ये सब हम जो इच्छा करते रहते, पुत्रेष्णा, पुत्र के प्रति। और दूसरी है वित्तेष्णा, वित्त धन के लिए, और धन की चाह बनी रहती है। और तीसरी बलवतीष्णा है, पुत्रेष्णा से, वित्तेष्णा से भी बड़ी ऐष्णा इच्छा जो है वो तो लोकेष्णा की है। लोक संसार हमको जाने, सब लोग हमको जान जाएं, सब हमको जहां जाएं वहां हमारी पहचान हो जाए, सब हमारा स्वागत करें, सब हमको हमारा नाम लेकर व्यक्तिगत रूप से जाने, अपने आप को हम जगत में सबके आगे जाहिर करने की हमारे अंदर एक होड़ रहती है, चाह रहती है कि हमारी पहचान होनी चाहिए। माने ये ऐष्णाएं, इन ईष्णाओं का त्याग करते हुए, तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पर। अच्छा, जब आत्मदर्शन होगा वहां स्वयं इन ऐष्णाओं का, इन इच्छाओं का त्याग करते हुए, त्याग पूर्वक आत्मभाव से जब सब में आप अपने आप को देख रहे हैं, अपने स्वरूप को देख रहे हैं, अर्थात आत्मा को देख रहे हैं, तब दूसरा तो कोई है ही नहीं। दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा हो तो तब उसको प्राप्त करने की कुछ इच्छा हो। माने संसार में दूसरा न देखते हुए, सब मैं अपने आप को देखते हुए मंत्र कहता है कि समस्त ऐष्णाओं का त्याग करते न तकते न भुंजिता, त्याग पूर्वक जीवन का पालन करना चाहिए, जीवन का निर्वाह करना चाहिए, त्याग पूर्वक निर्वाह करते हुए। तकते न भुंजिता माने ऐषाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग। और थोड़ी सी गंभीरता से विचार करें तो वास्तव में नारायण इच्छाओं के कारण हम दुखी हैं। सोचो, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षा रखते हैं, और इन अपेक्षाओं के कारण ही हमें दुख है। जहां अपेक्षा होती है वहीं उपेक्षा का दुख होता है। अपेक्षा होती है, आकांक्षा होती है। आकांक्षा क्या है? अपेक्षा माने आकांक्षा। आकांक्षा ये है कि हमें ऐसा मिलना चाहिए, एक आग्रह है। ये सबसे बड़ा ग्रह है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, यूं तो हम नौ ग्रह मानते हैं, परंतु यहाँ जो दसवां ग्रह है ना, आग्रह, ये सबसे बड़ा ग्रह है। कदाचित ये नौ ग्रह तो फिर भी ठीक हो जाएंगे, हमसे दूर है, परंतु ये सबसे बड़ा जो ग्रह है, आग्रह का भूत, हमारे मन को ऐसा पकड़े हुए, ऐसा होना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, जो हमारी ये चाह है, आकांक्षा है, यही हमारे लिए दुख का सबसे बड़ा कारण है। भगवान कहते हैं जीवन कैसा होना चाहिए? बोले आग्रह रहित, जिस जीवन में कोई आकांक्षा नहीं है, आग्रह नहीं है, सहज है। और उस सहजता में बिना किसी आग्रह के, आकांक्षा के जीवन का पालन करो, निर्वाह करो। आकांक्षा रहेगी और वो पूरी नहीं हुई तो आपके मन में आएगी कि मुझे मेरी उपेक्षा हो गई, और अपने आप को उपेक्षित महसूस करोगे तब दुखी होगा। जीवन कैसा होना चाहिए? मैं हमेशा कहती हूँ अपेक्षा और उपेक्षा से रहित हूँ। न जीवन में कोई अपेक्षा है, न कोई आकांक्षा है, और न किसी का तिरस्कार है, उपेक्षा भी नहीं, किसी का अनादर भी नहीं। न तो हम किसी का अनादर करते हैं, न किसी का तिरस्कार करते हैं, न किसी का बहिष्कार करते हैं, न किसी को हटाते हैं और न किसी को सटाते हैं। जीवन हमारा व्यतीत हो रहा है। जहां आग्रह रहता आकांक्षाएं रहती हैं, वहां आग्रह रह पूर्वक उसे अपने साथ सटा लेते हैं, और जिससे जहां आग्रह नहीं रहता है उसे अपने से दूर फेंकना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। हम कुछ जीवन में कुछ को हटाना चाहते हैं और कुछ को पास लाकर बिठाना चाहते हैं। ईमानदारी से सोचो तो सारा जीवन हम करते क्या है। मैं कई बार ये उदाहरण पहले भी आपको दे चुकी होंगी कि संसार मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ी भारी एक टकसाल है, और टकसाल जहां नोट छपते हैं उस टकसाल में काम करने के लिए जब टकसाल का कर्मचारी टकसाल में पहुंचता है तो टकसाल के भीतर जाने से पहले उसके गेट में रोककर उसकी सारी परीक्षा उसकी जांच की जाती है। जांच ये की जाती है ये कोई चीज अपने साथ अंदर न ले जा सके, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, और जो कुछ भी है उसके जांच परख करके उसे भीतर भेजा जाता है, बिल्कुल खाली हाथ, कुछ अपने साथ नहीं ले जाता। और जब टकसाल से काम पूरा करने के बाद वापस लौटता है तो फिर वहीं उसकी जांच ली जाती है, और कुछ उसके अपने साथ बाहर लाने नहीं दिया जा सकता। ना तो वो कुछ अंदर लेकर जा सकता है, ना कुछ अंदर से बाहर लेकर के आ सकता है। बस वो जब अंदर जाता है और खाली हाथ जाता है, बाहर निकलता है बिल्कुल खाली हाथ निकलता है, उस भले आदमी से पूछो कि तुमने सारा दिन वहां किया क्या। वो उधर से वहीं से लेकर के वहीं कुछ देता है, और वहीं से लेकर कुछ उधर की वस्तु इधर करता है, कुछ इधर की वस्तु उधर करता है, कुछ उठाता है कुछ बिठाता रखता है, अंदर ही अंदर वो इधर उधर करता रहता है उसी के अंदर, परंतु उससे बाहर न कुछ ला सकता है न कुछ ले जा सकता है। सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही ये जगत है, और उस टकसाल के व्यक्ति की न्याय हम जीवन जी रहे हैं। जब हम संसार में आए थे तब अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं आए थे, और जब इस संसार से हम जाएंगे तो बिल्कुल खाली हाथ कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। जो लिया हमने यहाँ से लिया, जो दिया हमने यहाँ दिया, यहीं से लिया, यहीं से दिया, यहीं से उठाया, यहीं से रखा, और यहीं से यहीं का यहीं हम इस अंदर बाहर इसी में करते रहे, अर्थात और अपने साथ कुछ नहीं लेकर के आए। उसी तरह से विचार करो कि इस संसार में जो कुछ भी हमने लिया यहीं से लिया, और यहाँ से लेकर कुछ चीजों को अपने साथ सटा लिया, कुछ अपने से हटा लिया, किसी को पास बिठा लिया, किसी को दूर कर लिया, किसी को अपने से दूर फेंक दिया। और ये जो पास और दूर करते रहे ना काम, वो किस कार्य से करने लगे कि हमारी बुद्धि में जो दो वृत्तियां हैं, एक रागात्मक वृत्ति है और एक द्वेषात्मक वृत्ति है, और इस वृत्ति के कारण जब बुद्धि में राग की वृत्ति आए उसे पास में ले आए, और जब द्वेष की वृत्ति आए तब हमें उससे अपने से दूर कर लिया। राग और द्वेष के कारण, राग और द्वेष की इन दोनों वृत्तियों के कारण ये सब, इन्हीं दोनों वृत्तियों में हमारा जीवन समाप्त होता चला गया। कभी हम राग के अधीन हो गए, कभी हम द्वेष के अधीन हो गए, और राग द्वेष के अधीन होकर किसी को पास में ले लिया, किसी को दूर कर लिया, यही सब कार्य हम करते रह गए। तब उपनिषद कहती है कि राग द्वेष से रहित होकर तेन तत्तेन भुंजिथा, अर्थात त्याग पूर्वक माने अपेक्षा आकांक्षा से रहित जीवन जीने के, तेन तत्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक जीवन को जीने के लिए हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। बोले त्याग, त्याग किसका, आकांक्षाओं का, इच्छाओं का त्याग, ऐशाओं का त्याग, वासनाओं का त्याग, आकांक्षा माने वासनाओं का त्याग करें, किसी प्रकार की मन में वांछना न रह जाए, चाह न रह जाए। ऐशाएं कहिए आकांक्षा कहिए, बात एक ही है। जिन आकांक्षाओं से, जिन इच्छाओं के कारण और सचमुच हमने हमारा जीवन छोटा कर लिया है, माने अपने आप में हम छोटे पड़ गए। क्यों? हमारी चाहतों के कारण। यदि इच्छा न हो, चाह गई, चिंता गई, मनवा भय बेपरवा। स्वामी राम अपने आप को सहन साह कहते थे, संत हुए हैं राम तीर्थ। राम तीर्थ से पूछा कि तुम कौन? वो हमेशा कहते थे, मैं बादशाहों का बादशाह हूं, मैं सहनसा राम हूं। उन्होंने कभी अपने आप को छोटा नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं सहनसा राम बोलता हूँ, मैं सहनसा राम कहता हूँ। बोली ये सहनसा न कोई राज, न कोई मुकुट, न कोई सिंहासन, न कोई प्रजा, कुछ नहीं है, और फिर भी वो अपने आप को बड़ा बादशाह बता रहे हैं। बोली बादशाही क्या है? बादशाही मेरी यही है कि मेरे भीतर से सारी चाह समाप्त हो गई, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, कोई इच्छा नहीं रह गई।